आस्था ने जैसे ही ये कहा उसे शर्म आ रही है। तब अरमान के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी का एहसास हुआ और अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, ओह तो मेरी आफत को अपने पति से शर्मा रही है, ठीक है। और ये बोलकर जिस तरह से अरमान आस्था को बालकनी में से कमरे में लेकर आया था और उसे उसी हालत में सीधा बाथरूम में लेकर आ गया था और बोला था, शर्मा रही है ना आपको मुझसे, तो बस अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर अपनी आँखें बंद करके बैठ जाइए क्योंकि आज हम साथ में नहाने वाले हैं। वो सुनकर तो आस्था के गाल और ज़्यादा शर्म से लाल हो गए और वो जल्दी से हकलाते हुए बोली, अरमान जी ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमें बहुत शर्म आ रही है, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। अरमान जी प्लीज़ आप बाहर चले जाए ना, आप प्लीज़ जाइए ना बाहर, प्लीज़ प्लीज़, आस्था ने बच्चों के जैसे ज़िद करते हुए कहा था। लेकिन आस्था के इस तरह से बोलने पर अरमान को तो उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो और ज़्यादा उससे लिपटते हुए बोला था, देखिए मिसेस सिंघानिया, अगर आप इस तरीके से बातें करेंगी और शर्माएंगी तो फिर तो मेरे लिए आपको छोड़कर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोलकर अरमान एक बार फिर आस्था के होठों की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन आस्था ने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखा और उसकी ओर देखकर बोली, देखिए अरमान जी हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें फटाफट से नहाकर बाहर भी जाना है और मामा जी के हालचाल भी लेने हैं, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। अब जैसे ही आस्था ने इस सारी बाथरूम वाली सिचुएशन के बीच मामा जी का जिक्र किया, अरमान ने तुरंत अपने सिर पर हाथ मार लिया और बोला, मुझे समझ में नहीं आता कितनी रोमांटिक सिचुएशन में भी तुम परिवार को बीच में कैसे लेकर आ जाती हो आखिरकार। अब अरमान की बातें सुनकर आस्था ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बदले में वो केवल अपने दांतों से होंठ काटने लगी। आस्था की इस हरकत को देखकर अरमान ने खुद पर से काबू खो दिया, उसने तुरंत ही चादर को अपने और आस्था के बीच से हटा दिया और बिना उसे कुछ बोलने का मौका दिए सीधा उसे बाथटब में ले आया। आस्था उसे रोकना चाहती थी लेकिन अरमान ने उसे अपने करीब खींच लिया और अपने स्पर्श से आस्था को पूरी तरह शांत कर दिया। एक बार फिर आस्था की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें पूरे बाथरूम में गूंजने लगीं और अरमान जितना हो सकता था उतना आस्था को सॉफ्टली प्यार करने लगा था। अरमान के बेपनाह प्यार से आस्था सिहर उठी और अरमान आस्था की मीठी मीठी आवाज़ें पूरी तरह महसूस कर रहा था और बेहद खुश हो रहा था। वहीं दूसरी ओर आकाश के विला में अबीर सिंह राठौर ने अविनाश और एंजल को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया था। अब अविनाश क्योंकि अबीर का अच्छा खासा दोस्त और भाई बन चुका था तो वो मना नहीं कर पाया और एंजल को लेकर नानी माँ को बताकर अबीर सिंह राठौर के पास जा पहुँचा। अबीर ने अपने नौकरों का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट लगवाया था। अब एंजल ने हल्की मुस्कान के साथ अबीर से हेलो कहा, तभी अविनाश थोड़ा चौंकते हुए बोला, अब मुझे समझ में नहीं आता मिस्टर राठौर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, पहले की तरह हम वहाँ पर भी एक साथ नाश्ता कर सकते थे। अब अबीर तुरंत ही अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, अरे आप तो जानते हैं अविनाश जी, मिस्टर सिंघानिया की यादें वापस आ चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे सिंघानिया मेंशन तो क्या उसके आसपास भी भटकने देंगे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अभी वहाँ थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि अगर मैंने मिस्टर अरमान सिंघानिया से पंगा लिया तो वो मुझे इस शहर से गायब करने में ज़्यादा देर नहीं करेंगे और जब तक मैं राजवीर को उसके अंजाम तक पहुँचते हुए नहीं देख लेता और साथ ही साथ आस्था की खुशी नहीं देख लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। जैसे ही अबीर ने मायूसी से इस तरह की बातें की अविनाश थोड़ा सोचते हुए बोला, शायद आप ठीक कह रहे हैं और वैसे भी हम भी यहाँ तभी तक हैं जब तक राजवीर का फैसला नहीं हो जाता, उसके बाद हमें भी वापस लौटना है क्योंकि दादाजी को हम ज़्यादा दिनों तक नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अविनाश की बात सुनकर अबीर तुरंत बोला, लेकिन अविनाश जी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। ये सुनकर अविनाश बोला, कैसी बातें कर रहे हो अबीर, तुम मेरे दोस्त कम भाई ज़्यादा हो, बोलो क्या कहना चाहते हो। तभी अबीर ने गहरी सांस ली और बोला, एक्चुअली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार आपको नींद कैसे आती होगी रात में, आपकी बहन एक इतने खतरनाक आदमी के साथ है, क्या आपको डर नहीं लगता उसे लेकर। ये सुनकर अविनाश के माथे पर हल्की लकीरें पड़ गईं। तब एंजल बोली, आप कहना क्या चाहते हैं अबीर जी, हमें क्यों डर लगेगा और वैसे भी आस्था अरमान को बहुत प्यार करती है और अरमान भी आस्था को बेहद प्यार करता है, मुझे नहीं लगता कि उनके बीच डर नाम की कोई चीज़ है, वो दोनों एक साथ खुश हैं। ये सुनकर अबीर हंसा और बोला, कितनी भोली हैं आप एंजल जी, आप ही बताइए राजवीर कितना खतरनाक है और ऊपर से सम्राट, लेकिन जब ये दोनों आस्था और अरमान की जिंदगी में नहीं आए थे तब अरमान भी तो वैसा ही था, राजवीर से भी ज्यादा खतरनाक और सम्राट से भी ज्यादा खौफनाक, शायद आपने उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं देखी है, केवल 6-7 साल की उम्र में उसने गुस्से में आकर एक छोटे बच्चे की जान ले ली थी और आप जानते हैं वो बच्चा कौन था, वंशिका का भाई। ये सुनकर एंजल और अविनाश एक दूसरे को देखने लगे।
फिर एंजल बोली, हमें उसके बारे में पता चला था, लेकिन अब अरमान वंशिका को अपनी छोटी बहन मानता है और उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर अबीर ने तुरंत ही अविनाश और एंजल को देखते हुए कहा था, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए और इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी देखिए, आस्था की सेफ्टी को लेकर मैं हमेशा सजग रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आस्था की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्यों ना एक काम किया जाए, ये जानने के लिए कि अरमान पूरी तरह से बदल चुका है या नहीं, एक छोटा सा टास्क किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उसने प्रियंका को डांटा, सबके सामने आस्था को लेकर चला गया, और ऊपर से जिस तरह से उसने मनोज जी को सबके सामने भला बुरा कहा, ये सारी बातें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। तो बस देखिए, जिस तरह से आप लोग आस्था की खुशी चाहते हैं, मैं भी सिर्फ उसी की खुशी चाहता हूँ, वरना मेरा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और मुझे गलत नहीं समझेंगे, अबीर ने पूरी तरह सफाई देते हुए कहा। अब एक पल के लिए कहीं ना कहीं अविनाश और एंजल दोनों ही अबीर की बातों को लेकर हैरानी में पड़ गए थे और सोच में डूब गए थे। वहीं अबीर मन ही मन बोला, अगर अरमान सिंघानिया एक बार फिर से पागल हो गया या अपने जुनून में अंधा बन गया, तो मैं उसे आस्था की जिंदगी में किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अब मैं आस्था की आंखों में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देख सकता। इस वक्त अबीर पूरी तरह से आस्था के लिए कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि वो आस्था की जिंदगी में अरमान जैसे खतरनाक इंसान को नहीं देखना चाहता था, जो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर मनोज जी नींद से जाग चुके थे। नानी माँ मनोज जी के पास बैठी हुई थी। उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वक्त अगर तुम इस तरह का उल्टा सीधा बर्ताव करोगे तो उसका असर तुम्हारी बेटियों पर पड़ेगा। तुम तो जानते ही हो ना प्रियंका की मानसिक हालत इस वक्त कैसी है। सच में तुम्हें उसे संभालना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से उससे बातें नहीं करनी चाहिए। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात। ये सुनकर मनोज जी ने अपनी माँ यानी शारदा जी को कोई जवाब नहीं दिया, वो केवल मुंह लटकाए वहीं बैठे रहे।
तभी प्रियंका भी सोकर उठने के बाद सीधा मनोज जी के पास आ गई। वो आकर सीधा अपने पिता के गले लग गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। काश उस राजवीर जिंदल ने मेरी जान ही ले ली होती, मुझे इस तरह से जिंदा ना छोड़ा होता, तो आप लोगों को इस तरह की जिंदगी नहीं देखनी पड़ती। काश उसने मुझे भी मार दिया होता तो कितना अच्छा रहता। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोज जी तड़प कर रह गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे नहीं, तुम्हें इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे माफ कर देना बेटी कि मैंने तुमसे ऐसा बर्ताव किया, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा किसी और के चेहरे से मिलते देखना और उसे प्यार करना, इन सब में बहुत फर्क होता है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बच्चा मेरी बात को समझेगा और मुझे गलत नहीं समझेगा। मनोज जी की बातें सुनकर प्रियंका रो रही थी, वहीं सीमा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो आगे बढ़कर अपने पति को गले से लगा ली, लेकिन उसी वक्त मनोज जी गहरी सोच में डूब गए। वो मन ही मन बोले, बेटा तुम्हारे चेहरे के पीछे कितनी खौफनाक सच्चाई छिपी है, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। बस मैं दुआ करता हूँ कि जिस दिन तुम्हें सारा सच पता चलेगा, उस दिन शायद सबको मेरी बातों का मतलब समझ में आएगा। ये सोचते हुए मनोज जी कहीं ना कहीं अपने ही ख्यालों में खो गए। वहीं दूसरी ओर रश्मि आज काफी देर तक सोती रही थी। हालांकि आकाश उसे जगाने की कोशिश करके जिम से भी वापस आ गया था, लेकिन वो अभी तक सोई हुई थी। ये देखकर आकाश को थोड़ा अजीब लगा। उसने जाकर रश्मि का माथा चेक किया, उसे बुखार भी नहीं था। आकाश ने उसे आवाज दी, रश्मि क्या हो गया, इतनी देर तक तुम कभी भी नहीं सोती हो, तो आज क्यों सो रही हो। लेकिन रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो आकाश हैरान हो गया। उसने तुरंत वंशिका और ध्रुव को फोन किया और उन्हें तुरंत वहां आने के लिए कहा। कुछ ही देर में वंशिका और ध्रुव दोनों रश्मि के कमरे में पहुंच गए। आकाश ने वंशिका को इशारे से बताया कि रश्मि उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है। ये सुनकर वंशिका और ध्रुव दोनों ही हैरान रह गए। ध्रुव ने तुरंत रश्मि को अच्छे से चेक किया और फिर बोला, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बहुत ज्यादा थकी हुई है और उसे अभी आराम की सख्त जरूरत है। ये सुनकर आकाश ने राहत की सांस ली और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, लेकिन इतनी देर तक तो रश्मि कभी भी नहीं सोती है। आकाश की आंखों में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर ध्रुव और वंशिका को काफी अच्छा लगा था। आखिर क्या कारण है रश्मि कैसी कमजोरी के पीछे। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM।